जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद तो आज हम चैतन्य चरितमृत से चर्चा करेंगे। दो फेस्टिवल्स है, एक है अक्षय तृतीया और दूसरा है चंदन यात्रा का शुभारंभ हो रहा है पूरे विश्व में। चैतन्य चरितमृत में चंदन यात्रा का वर्णन आता है, विशेष रूप से जो माधवेंद्र पुरी है उनके बारे में, तो हम चैतन्य चरितमृत से उसमें से सुनेंगे। तो अक्षय तृतीया, अक्षय मतलब जिसका कभी क्षय नहीं होता। तो आज जो भी व्यक्ति कार्य करता है शुभ कार्य, उनका लाभ व्यक्ति को हमेशा के लिए प्राप्त होता है। इसलिए आज कई सारे महत्वपूर्ण जो कार्य है व्यक्ति अपने जीवन में करता है, तो बल्कि आज के दिन व्यक्ति को अधिक से अधिक श्रवण कीर्तन करना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए। इस संसार के जो भी कार्य है उनका क्षय एक ना एक दिन होने वाला है, यह निश्चित है। लेकिन गीता में भगवान कहते हैं नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायम विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया, कि भगवान से संबंधित थोड़ा भी आप कुछ कार्य करते हो वो आपके आपके पास अपना हमेशा के लिए बना रहता है। और भगवान कहते हैं त्रायते महतो भया, वो भगवत सेवा हमारे जीवन में हमें महान भय से रक्षा करती है। इसलिए भगवत भक्ति के कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। तो आज के दिन बहुत सारी चीजें हुई है, शास्त्र में वर्णन आता है परशुराम जो भगवान के एक अवतार है वो भी आज के दिन प्रकट हुए थे। आज के दिन ही गंगा देवी इस पृथ्वी पर अवतरित हो गई थी और आज के दिन ही त्रेता युग की क्या हो गई थी, शुरुआत हो गई थी। और आज के दिन ही भगवान कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका में सुदामा ब्राह्मण गए थे, इसलिए हमें मंदिर आना चाहिए आज के दिन भगवान से मिलने के लिए। लेकिन कुछ मांगे ना, जैसे सुदामा ने कुछ मांगा नहीं, लेकिन क्या लेकर गए, चिप राइस, सिंपल सा, और भगवान को प्रदान किया। और आज के दिन ही पांडवों ने पांडवों को अक्षय पात्र प्राप्त हुआ था, द्रौपदी के पास था ना अक्षय पात्र। तो और शंकराचार्य ने भी कई स्तोत्रों की रचना की थी और वर्णन आता है कि आज के दिन जगन्नाथपुरी में जो रथ यात्रा फेस्टिवल आता है आज के दिन ही रथ का निर्माण कार्य शुरू हो जाता है। इस प्रकार से बहुत सारे उत्सवों की बहुत महत्वपूर्ण कार्य आज के दिन हुए हैं। और विशेष रूप से दो चीजें, एक तो जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ का जो रथ है उसका कंस्ट्रक्शन आज से शुरू हो जाता है और एक महीना तक चलता है, एक डेढ़ महीना। रथ यात्रा 18 जुलाई को है तो आज से शुरू हो गया, सोचो। और दूसरा, आज के दिन ही रेमुना जो उड़ीसा में एक छोटा सा टाउन है वहां भगवान निवास करते हैं गोपीनाथ, तो उनको आज के दिन से ही चंदन लगाना प्रारंभ किया जाता है। तो ये जो चंदन यात्रा है ये 21 दिन के लिए मनाई जाती है पूरे विश्व में। अभी प्रभुपाद की देन यह है कि पूरे विश्व में जितने भी विग्रह है, इस्कॉन के टेम्पल्स है, सब जगह भगवान को चंदन का लेप लगाया जाता है। तो इन 21 दिनों में प्रयास करना चाहिए अलग अलग टेम्पल्स में जाकर भगवान का विग्रहों का दर्शन भी करें। जनरली डिवोटीज वृंदावन जाते हैं, वृंदावन में सारे मंदिरों में संडेज वगैरह में क्या है, चंदन के लेप से सारे विग्रह सजे रहते हैं। तो ये विशेष लीला श्रीपाद माधवेंद्र पुरी से संबंधित है, तो ये श्लोक हम उच्चारण करेंगे जिसमें भगवान स्वयं बोल रहे हैं। ये शब्द किसके हैं इस श्लोक में? गोपाल के हैं। तो मेरे पीछे दोहराइए, गोपाल कहे पुरी अमार ताप नाही जाए, मलय ज चंदन लेप तबे से जुड़ाए, गोपाल कहे पुरी अमार ताप नाही जाए, मलय ज चंदन लेप तबे से जुड़ाए, गोपाल कहे पुरी अमार ताप नाही जाए, मलय ज चंदन लेप तबे से जुड़ाए, गोपाल कहे पुरी अमार ताप नाही जाए, मलय ज चंदन लेप माता जी, गोपाल कहे पुरी अमार ताप नाही जाए, मलय ज चंदन लेप तबे से जुड़ाए। शब्द गोपाल, गोपाल अर्च विग्रह, कहे ने कहा, पुरी मेरे प्रिय माधवेंद्र पुरी, अमार मेरा ताप शरीर का तापमान, नाही नहीं जाए जाता, मलय चंदन मलय पर्वत पर उत्पन्न चंदन की लकड़ी का लेप शरीर पर लेप करो, तबे तब से वह जुड़ाया ठंडा होगा। अनुवाद और तात्पर्य हिंदी वन प्लेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद के ध्यान से सुनिए। सपने में माधवेंद्र पुरी ने देखा कि गोपाल कह रहे हैं मेरे शरीर का ताप अभी भी कम नहीं हुआ है, तुम मलय प्रदेश से चंदन लाओ और मुझे शीतल बनाने के लिए मेरे शरीर पर इसका लेप करो। तात्पर्य गोपाल विग्रह अनेक वर्षों तक जंगल में दबे पड़े रहे और आप यद्यपि उन्हें प्रतिष्ठित करके उनका हजारों घड़े पानी से अभिषेक किया गया था, फिर भी उन्हें गर्मी लग रही थी, इसलिए उन्होंने माधवेंद्र पुरी से मलय प्रांत से चंदन लाने के लिए कहा। मलय में उत्पन्न चंदन अत्यंत विख्यात है, ये प्रांत पश्चिमी घाट में है और नीलगिरी पहाड़ियां कभी कभी मलय पर्वत कहलाती हैं। मलय च शब्द मलय प्रांत में उत्पन्न चंदन का सूचक है, कभी कभी वर्तमान मलेशिया देश को भी मलय कहते हैं। पहले इस देश में भी चंदन उत्पन्न होता था, अभी क्या हो गया? पहले होता था किंतु अब उनको रबड़ के वृक्ष उगाना अधिक लाभप्रद लगता है। यद्यपि किसी समय मलेशिया में वैदिक संस्कृति प्रचलित थी किंतु आप वहां के सारे निवासी मुसलमान हैं। अब मलेशिया जावा तथा इंडोनेशिया में वैदिक संस्कृति लुप्त हो चुकी है। तो ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपात् दामयहं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में जो चौथा अध्याय है वो पूरा अध्याय इस लीला का वर्णन करता है कि माधवेंद्र पुरी की जो भगवत भक्ति है भगवान गोपाल के प्रति कितनी सर्वोच्च है। और वास्तव में इस लीला से ये पता चलता है कि कितना बड़ा सैक्रिफाइस या त्याग एक भक्त भगवान की सेवा के लिए करने के लिए तैयार होता है। तो भक्त की जो सर्वश्रेष्ठता है उससे देखी जाती है कि वो भगवान की सेवा के लिए कितना कष्ट अपने जीवन में उठाता है। तो उन्नत भक्त का एक लक्षण है, क्या लक्षण है कि भगवान की सेवा के लिए सब प्रकार की रिस्क अपने लाइफ में लेने के लिए तैयार होता है। देखो श्रील प्रभुपाद का जीवन, 70 साल की आयु में उन्होंने इतना बड़ा रिस्क ले लिया अमेरिका जाने का, ऐसा कौन कर सकता है। वही व्यक्ति भगवान की सेवा की सबसे बड़े रिस्क अपने लाइफ में ले सकता है वास्तव में जिसके हृदय में भगवान के लिए प्रेम जागृत हो गया है, अन्यथा किसी और व्यक्ति में वो हिम्मत नहीं है। हमें सुबह उठने की हिम्मत नहीं है मंगल आरती जाने के लिए, ये छोटा सा रिस्क हम नहीं ले पाते। तो वहां 70 साल की आयु में जहां उनके लिए कोई प्रसाद रखने वाला नहीं है, उनके लिए रहने के लिए स्थान नहीं है, लेकिन फिर भी प्रभुपाद दौड़ पड़ते हैं। क्यों? हृदय में इतना प्रेम भर गया है। सेम उसी प्रकार से माधवेंद्र पुरी का जीवन है। माधवेंद्र पुरे भगवान की सेवा के लिए इतना बड़ा टफ रिस्क अपने लाइफ में लेते हैं, इसी कारण से उनका चरित्र किसमें है, चैतन्य चरितामृत में है। हाँ, अक्षय है उनका चरित्र, क्या है, क्षय नहीं। हजारों सालों से लोग सुन रहे हैं, सुनेंगे आगे चलकर कि किस प्रकार से उनका प्रेममयी सेवा की भावना गोपाल के प्रति थी। और इससे ये भी देखा जाता है कि जो विग्रह है वो वास्तव में कोई मूर्ति नहीं है, कोई संगमरवर का मूर्ति नहीं है, विग्रह कौन है, साक्षात कृष्ण है। उनको फीलिंग्स है, उनकी इच्छाएं हैं, वो भी चाहते हैं अपने भक्तों से आदान प्रदान करना, लेकिन उसके लिए एक भक्त के पास विशेष योग्यता की आवश्यकता है। ये यथा मां प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजाम्यहम् हम। गीता में भगवान कहते हैं आप मुझे पत्थर समझोगे तो मैं पत्थर के समान ही तुमसे व्यवहार रखूंगा, आप मुझे साक्षात ये समझकर मेरी सेवा करोगे कि ये नंद महाराज के पुत्र यहाँ खड़े हैं तो देखो मैं कैसे व्यवहार करूंगा। तो जैसी हमारी सेवा की भावना है उसी प्रकार से विग्रह भी हमसे आदान प्रदान करते हैं, उसी प्रकार से भगवान का नाम भी, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है वो साक्षात कृष्ण है। पुराणों में वर्णन आता है नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, ये नाम चिंतामणि है, चैतन्य मतलब लाइफ है, अलग नहीं है, और रस विग्रह है, रस से परिपूर्ण विग्रह रूप है साक्षात। तो ऐसा भगवत नाम भी हम ऐसी भावना से लेते हैं कि ये तो कृष्ण कैसे हो सकता है, कृष्ण और ये नाम भी कृष्ण के समान है, तो फिर वो नाम हमसे आदान प्रदान नहीं करेगा। हजारों साल तक हरे कृष्ण मंत्र बोलते रहेंगे तो इसी जगत में हम सड़ते रहेंगे जब तक ये भावना का उदय नहीं होगा, अभिन्नत्वात् नाम नामिना। तो इस प्रकार से आध्यात्मिक जीवन के हर एक कार्य भगवान से अभिन्न है, लेकिन हमारे मनोवृत्ति पर निर्भर है किस भावना से हम क्या करते हैं, हाँ, व्यवहार करते हैं। तो ऐसे माधवेंद्र पुरी आपके बारे में चैतन्य चरितामृत में हम सुनते हैं और बहुत डिटेल वर्णन हमें प्राप्त होता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब संन्यास लिया तो संन्यास लेकर चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी के लिए निकल पड़े अपने चार भक्तों के साथ। निकलते निकलते चैतन्य महाप्रभु ने बंगाल को क्रॉस किया, बहुत कठिनाई थी, कई सारे लुटेरे आदि थे। चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने जाते थे और लोगों से भिक्षा मांगते थे और जो भी चावल ये सब दान में मिलता था चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के संग में रास्ते के किनारे में कुकिंग करके पाते थे और आगे चलते थे। ये उनका ओरिसा का यात्रा था, जगन्नाथपुरी का यात्रा था। अभी हमारे लिए कितना इजी है, एसी ट्रेन में बैठो, पहले से फोन करो इलाहाबाद, प्रभु जी 10 भक्त आ रहे हैं, ट्रेन में प्रसाद, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तक हम जगन्नाथपुरी में पहुंचते हैं। चैतन्य महाप्रभु लगभग 10 एक दिन लगे होंगे, 10 या 12 दिन बंगाल से उड़ीसा पहुंचने में। पहुंचते जाते जाते वो एक विशेष गांव में पहुंचे जिसका नाम था रेमुना। क्या नाम था? रेमुना। रेमुना ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो रमणीय स्थान था जहां बहुत सारे वृक्ष आदि थे, तालाब थे, इतना रमणीय कि भगवान राम और सीता देवी अपने वनवास के समय में वहां गए थे। हम कई बार उस प्लेस में गए तो वहां उस स्थान में भगवान गोपीनाथ निवास करते हैं। चैतन्य महाप्रभु वहां पहुंचे, पहुंचने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने जाते ही क्या किया, भगवान गोपीनाथ का दर्शन किया। रेमुनाते गोपीनाथ परम मोहन। रेमुना में गोपीनाथ कैसे हैं? मोहन नहीं, परम मोहन, सबसे अधिक सौंदर्यवान। तो ऐसे कृष्णदास कविराज कहते हैं चैतन्य महाप्रभु उस टाउन में गए, जाते ही सबसे पहले उन्होंने गोपीनाथ का दर्शन किया और उनको अपने हृदय की भक्तिपूर्व भावना से उनको प्रणाम किया। और फिर जैसे चैतन्य महाप्रभु विग्रह के सामने ऐसे प्रणाम किए हुए थे तो गोपीनाथ ने जो मुकुट पहना था, पुष्प मुकुट, कैसा मुकुट था वो? पुष्प मुकुट, उसको कहते हैं पुष्प चूड़ा। तो पुष्प मुकुट गिरता है भगवान के सर से और चैतन्य महाप्रभु के सर में मस्तक पर गिर जाता है, सोचो। और फिर चैतन्य महाप्रभु उठ जाते, प्रसन्न हो जाते, हर्षित हो जाते हैं और फिर अपने चार भक्तों को लेकर जोर जोर से कीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो अभी वहां के जो पुजारी थे वो तो ऐसे आके फाड़ फाड़ के देख रहे थे, ऐसा नृत्य हमने कभी नहीं देखा। जैसे रथ यात्रा थी, लोग तो ऐसे बाहर आकर आके बड़ी बड़ी करके, जगन्नाथ के आगमन से भी बड़ी बड़ी कर करके छत के ऊपर यहाँ वहां खड़े होकर देख रहे क्या हो रहा है। सारे पीले वस्त्र में नाच रहे, रेड वस्त्र में नाच रहे, माताएं नाच रही, इतना सब कुछ आ रहा है, लोगों को आश्चर्य था कि ऐसा कभी नहीं देखा हमने। वैसे ही पुजारियों ने देखा, अरे हमारे मंदिर में विग्रह के सामने ऐसा नृत्य हमने कभी नहीं देखा, ऐसा गान या कीर्तन हमने नहीं देखा। तो ये नाचने लगे, गाने लगे और जब महाप्रभु को देखा सबने नाचते हुए तो उनको देखकर सब लोग आश्चर्य व्यक्त कर रहे थे और उनसे आकृष्ट हो रहे थे। तो फिर चैतन्य महाप्रभु के वहां के भक्तों ने या पुजारियों ने बहुत सारी सेवा की और उनको रिक्वेस्ट किया कि आप यहाँ रुक जाइए। अभी चैतन्य महाप्रभु सब कुछ पता था पहले, वो खुद वहां रहना चाहते थे मंदिर में। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले वहां के जो विग्रह गोपीनाथ थे उनके बारे में सुना हुआ था और एक विशेष चीज के बारे में सुना था कि गोपीनाथ को अमृत केली नाम की खीर अर्पित होती है। आज मुझे यहाँ रहना है क्योंकि कल सुबह क्या खाऊंगा? खीर प्रसाद। यहाँ वर्णन आता है कि महाप्रसाद क्षीर लोभे रहिला प्रभु तथा, मतलब चैतन्य महाप्रभु को भी लोभ हो गया था इस चीज का, खीर प्रसाद खाने का। वो पुजारी कहते भी चले जाओ तो चैतन्य महाप्रभु जाने वाले नहीं थे, महाप्रभु को अंदर लोभ था प्रसाद ग्रहण करने का, उन्होंने कहा अच्छा है हाँ हम यहाँ रुकेंगे। तो फिर मतलब रुके तो फिर ऐसे नहीं कि बस खीर खाकर संतुष्ट है, कुछ जानेंगे नहीं भगवान के बारे में, नहीं। चैतन्य महाप्रभु सिखाते हैं इस लीला से कि जहां जहां आप जिन स्थानों में जाते हो, भ्रमण करते हो, यात्राओं में जाते हो, उस स्थान में विग्रह आदि का दर्शन करते हो, तो उस स्थान में जाकर उस विग्रह आदि की महिमा को क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए। अन्यथा उस स्थान का गमन करना पूर्ण नहीं है, परिपूर्ण नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु ने देखा, चैतन्य महाप्रभु के साथ कौन थे, नित्यानंद प्रभु थे, जगदानंद थे, दामोदर पंडित थे, तो ऐसे डिवोटीज थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं इन विग्रह के बारे में बताऊंगा, आज मैं लेक्चर दूंगा। चैतन्य महाप्रभु ने बहुत कम लेक्चर दिए हैं, एक लेक्चर दिया किसको, सनातन गोस्वामी को, लंबा एक महीने का लेक्चर था, और एक लेक्चर दिया रूप गोस्वामी को दशाश्वमेध घाट इलाहाबाद में, 12 दिन या 10 दिन ऐसे कुछ था, और एक लेक्चर ये फेमस लेक्चर है चैतन्य महाप्रभु का। लेकिन चैतन्य महाप्रभु को किसी टॉपिक पर बोलना अच्छा लगता था तो वो था भक्तों का जीवन। जब उनको पता चला माधवेंद्रपुरी, तो उन्होंने कहा मैं बोलूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु वहां बोलने लगे उन डिवोटीज को कि आप जानते हो इस एक गोपीनाथ है, गोपीनाथ का नाम अभी गोपीनाथ नहीं रहा, उनके आगे और भी एक संबोधन जुड़ गया है। गोपीनाथ को क्या कहते हैं, क्षीर चोरा या खीर चोरा गोपीनाथ। हाँ, ये भक्तों ने पहली बार सुना, भगवान भी चोरी करते, पता था माखन चोर है, लेकिन यहाँ क्या चुराते हैं, खीर भी चुराते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब बोला, महाप्रभु ने कहा इनका नाम खीर चोरा गोपीनाथ पूरे त्रिभुवन में प्रसिद्ध है। तो फिर उन्होंने कहा कि ऐसे क्यों इनका नाम पड़ा, माधवेंद्रपुरी के बारे में, किसके बारे में, माधवेंद्रपुरी के कारण भगवान का ये नाम पड़ा। तो फिर चैतन्य महाप्रभु भक्तों को माधवेंद्रपुरी के बारे में वर्णन करने लगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये माधवेंद्रपुरी नाम के एक महान, माधवेंद्रपुरी कौन है, चैतन्य महाप्रभु के गुरु के गुरु है, चैतन्य महाप्रभु के गुरु है ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी के गुरु है माधवेंद्रपुरी, और माधवेंद्रपुरी के गुरु है लक्ष्मी तीर्थ, जो मध्वाचार्य के संप्रदाय से आते हैं। हम सब मध्वाचार्य दक्षिण भारत के उधर मध्वाचार्य के संप्रदाय में हैं, लेकिन माधवेंद्रपुरी के कारण हमारी शाखा अलग हो गई है, एक ही वृक्ष में है लेकिन एक नई शाखा शुरू हो गई। इस शाखा को क्या कहते हैं, गौड़िया संप्रदाय, मध्वा ब्रह्म मध्वा गौड़िया संप्रदाय। तो ये जो शुरुआत है ये वास्तव में माधवेंद्रपुरी के कारण हो गई, क्योंकि मध्वाचार्य के संप्रदाय में भगवान के प्रति इस भावना का ये नहीं है, अधिकतर प्रसिद्धि नहीं है कि भगवान की सेवा गोपियों के भाव में की जाए। इस संप्रदाय की खासियत क्या है गौड़िया संप्रदाय की, कि कृष्ण की सेवा इस संप्रदाय में विप्रलंब भाव सर्वोत्कृष्ट है। विप्रलंब मीन्स भगवान के प्रति विरह की भावना, जो भावना गोपियों ने प्रकट की थी जब भगवान ब्रज भूमि को त्याग कर चले गए थे। विप्रलंब एक प्रकार से माधुर्य भाव का सर्वोच्च धरातल है, और चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में भक्त से आशा की जाती है कि वो कौन सी भावना जागृत करे, विप्रलंब भाव, और वो सबसे कठिन है, एक जीवन तो इम्पॉसिबल है। तो ऐसे माधवेंद्रपुरी के कारण वास्तव में राधा कृष्ण की सेवा शुरू हुई है। पहले कृष्ण की एक प्रकार से उपासना होती थी सब जगह, आप देखो कई सारे मंदिरों में, लेकिन माधवेंद्रपुरी आने के बाद राधा कृष्ण जुगल जुगल सेवा, युगल मीन्स टू, तो युगल सेवा सब जगह शुरू होती है। इसलिए आदि लीला में कृष्णदास कविराज कहते हैं कि ये जो कृष्ण के प्रति प्रेम की जो भावना है इस संप्रदाय में माधवेंद्रपुरी ने स्टार्ट की है।
और माधवेंद्रपुरी इस संप्रदाय में कृष्ण प्रेम अंकुर है। कृष्ण प्रेम के अंकुर कौन है? माधवेंद्रपुरी है। और जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए तो वो अंकुर जो था छोटा सा उसने वृक्ष का रूप धारण किया। इस प्रकार से माधवेंद्रपुरी का वर्णन चैतन्य महाप्रभु करते हैं। और माधवेंद्रपुरी का वर्णन वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में लिखते हैं कि माधवेंद्रपुरी का ऐसा प्रेम था कृष्ण के लिए, जब वो आकाश में घना बादल भी देखते थे तो वो मूर्छित हो जाते थे। किसका स्मरण करके? कृष्ण का स्मरण, इतना प्रेम। और माधवेंद्रपुरी कभी ग्रुप में नहीं घूमते थे, अकेले अकेले जाते थे। क्यों? उनको लगता था कि ये दूसरा व्यक्ति कुछ प्रजल्प करेगा, जिसके कारण वो कहते हैं द्वितीय संगहीन। द्वितीय मीन्स दूसरे व्यक्ति के संग से हीन थे, मतलब सोचते थे कि एक और एक मेरे साथ होगा वो कुछ प्रजल्प करता रहेगा, जिसके कारण मेरे कृष्ण स्मरण में बाधा आ सकती है, इसलिए वो ऐसे व्यक्तियों से दूर ही रहते थे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ऐसे माधवेंद्रपुरी एक बार वृंदावन आते हैं घूमते घूमते गोवर्धन, और जो कृष्ण प्रेम में उन्मत्त हो गए थे, उनको पता नहीं था दिन क्या है रात्रि क्या है। और उन्होंने फिर गोवर्धन की परिक्रमा करना शुरू किया और गोविंद कुंड तक आकर पहुंचे। गोविंद कुंड में आए माधवेंद्रपुरी, वहां उन्होंने स्नान किया। गोविंद कुंड वो स्थान है जहां इंद्र ने क्या किया था, भगवान का अभिषेक किया था। और वहां ही गोविंद कुंड में भगवान कृष्ण को नया नाम मिला था, गोविंद नाम मिला था, उससे पहले बाकी कई सारे उनके नाम थे। तो ऐसे गोविंद कुंड में स्नान किया और राधवेंद्रपुरी एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। और उसी समय एक छोटा सा बालक आता है, कौन बाल, वो दूध का एक घड़ा लेकर आता है, एक पात्र लेकर आता है। और वो बालक माधवेंद्रपुरी के हाथ में उस दूध के पात्र को पकड़ाता है और हंसते हुए कहता है कि ओ माधवेंद्रपुरी, मैं आपके लिए दूध लेके आया हूँ, कृपया इसको ग्रहण कीजिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप किसी से कुछ मांगते नहीं हो भोजन के लिए, और आप किस चीज का ध्यान भी नहीं करते हो। तो माधवेंद्रपुरी उस बालक की ओर देखने लगे, देखते उन्होंने सोचे कितना सौंदर्यवान है। और उस बालक के ऐसे वाणी को सुनकर माधवेंद्रपुरी की भूख और प्यास भी मिट जाती है। और माधवेंद्रपुरी ने पूछा, हे बालक बताओ तुम कौन हो, कहां से आए हो, तो इस प्रकार से, और आपको कैसे पता चला कि मैं भूखा प्यासा हूं यहाँ। तो उस बालक ने कहा कि मैं इस गांव का निवासी हूं। उस गांव का नाम क्या था? अन्योर। क्या नाम था? अन्योर मीन्स कि जहां गोवर्धन जी जब भोगा खा रहे थे और फिर खाते खाते खत्म हो जाता था तो भगवान या गोवर्धन चिल्लाते थे और लाओ और लाओ, इसलिए उस गांव का नाम क्या पड़ा? अन्योर। अब ब्रज के हर गांव कृष्ण की लीला का स्मरण कराते हैं। अब हाईवे से जाते हो ब्रज में तो एक मेन हाईवे में एक गांव बोर्ड देखते हो, उसका नाम है चौमुहा। देखा कभी चौमुहा? तो चौमुहा मीन्स जहां ब्रह्मा ने बछड़ों की चोरी की थी, जहां वो सारे लीलाएं घटित हुई थी। इसलिए कृष्णदास कविराज इस अध्याय में कहते हैं कृष्ण भक्ति के लिए सबसे अच्छा स्थान कोई है इस संसार में तो वो कौन सा है? वृंदावन है, क्योंकि जहां कृष्ण का स्मरण करना स्वाभाविक है। इस भौतिक स्थानों में हम रहते हैं दिल्ली आदि में, तो यहाँ तो भगवान का स्मरण करना अत्यधिक कठिन है, वहां न चाहते हुए भी कृष्ण का स्मरण होता है। तो वो बालक उनको कहता है कि मैं इस गांव का निवासी हूं और इस गांव में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहता है, या ये कोई व्यक्ति यहाँ मांगकर खाता है या कोई दूध पीकर रहता है और कोई नहीं मांगता उसके लिए मैं स्वयं लेकर जाता हूँ। उस बालक ने कहा अभी वो स्त्रिया गोविंदपुर में पानी भरने आए थे, उस स्त्रियों ने मुझे आपके बारे में बताया कि आप भूखे प्यासे हो, वृक्ष के नीचे बैठे हो, इसलिए उन स्त्रियों ने मुझे भेजा है। उन्होंने कहा ये जल्दी दूध पी लो, मुझे गाय धोने जाना है और आप आकर मेरे जो पात्र है वो ले लूंगा। तो वो बालक चला जाता है तो माधवेंद्र पुरी इस बालक के बारे में सोचते रह गए और फिर उन्होंने दूध पी लिया, पात्र को धो लिया, वृक्ष के नीचे बैठ गए। रात्रि हो गई, उनको नींद नहीं आ रही थी, वो क्या कर रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो उनको नींद नहीं आई, उस बालक का इंतजार कर रहे थे। जब रात्रि शेष होने में थी तो उस समय उनको थोड़ी सी तंद्रा आ गई और उस समय स्वप्न आया। जिस बालक ने उनको दूध दिया था वो बालक स्वप्न में आता है और उनका हाथ पकड़ता है। एक कुंज लया गेला हाते ते धरिया, एक कुंज में से गार्डन या फिर एक झाड़ियों में माधवेंद्र पुरी का हाथ पकड़कर वो बालक चला जाता है और कहता है कि देखो देखो इन झाड़ियों में मैं निवास कर रहा हूं, मुझे ठंड गर्मी वर्षा आदि से मैं बहुत कष्ट प्राप्त कर रहा हूं, आप क्या करो गांव के लोगों को लेकर आओ और इन झाड़ियों से मुझे खुदाई कर निकालो, अरे जो गोवर्धन है उसके सबसे ऊंची चोटी पर मुझे रखो, मेरे लिए मंदिर बनाओ और मुझे स्थापित करो और अधिक से अधिक ठंडे पानी से मुझे स्नान कराओ, मेरा शरीर स्वच्छ करो। कौन कह रहा है, कृष्ण कह रहे हैं, गोपाल भगवान स्वयं कह रहे हैं। फिर भगवान कहते हैं बहुदिन तुम्हारे पथ करे निरीक्षण कवि आसी माधवा मा करे बेसेवन। तो स्वयं भगवान बोलने लगे, कहा कि हे माधवेंद्र पुरे मैं कब से इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा कि कब तुम आओगे और मुझे निकालोगे। मींस भगवान स्वयं अपने भक्तों का इंतजार करते हैं, वेट करते हैं और भगवान अपनी सेवा के लिए भक्तों को चूज करते हैं। तो जब हमें सेवा मिलती है तो हमें क्या सोचना चाहिए, किसने चूज किया है मुझे, कृष्ण ने चूज किया है। माधवेंद्र पुरी को भगवान ने, कई लोग गोवर्धन परिक्रमा कर रहे थे, हमने भी कई बार किए सबने, कभी आपको पकड़ा है किसी ने वहां हाथ पकड़कर चलिए झाड़ियों में कि वहां मैं लेटा हुआ मुझे निकालिए, नहीं। तो यहाँ हम माधवेंद्र पुरी परिक्रमा करते करते भगवान उनको पकड़ते और अपनी सेवा प्रदान करते हैं। इस प्रकार से भगवान ने कहा कि तुम्हारे हृदय में मेरे लिए इतना प्रेम भाव है जिसके कारण मैं इंतजार करता रहा तुम्हारा, तुमसे सेवा को स्वीकार करने के लिए, इसलिए मुझे उन झाड़ियों से निकालो, मुझे प्रकट कराओ और सारे जगत को मैं दर्शन देना चाहता हूँ और सारे जगत का उद्धार करना चाहता हूँ। तो कोई कह सकता है कि माधवेंद्र पुरी के मन में शंका हो सकती है, ये कौन बोल रहा है, वो पूछ सकते तुम्हारा परिचय दे दो, क्या दे दो, परिचय। तो भगवान स्वयं ही अपने बारे में बोलते हैं, भगवान कहते हैं श्री गोपाल नाम मोर गोवर्धन धारी ब्रज रस्थापित आमि यहां अधिकारी। मेरा नाम क्या है, गोवर्धन, मेरा नाम गोपाल है और मैं क्या धारण करता हूं, गोवर्धन को। ब्रज रस्थापित आमि, मेरी स्थापना कृष्ण के जो प्रपौत्र थे वज्रना उन्होंने की थी और ब्रज का अधिकारी कौन हूं, मैं हूं। भगवान के पुत्र थे प्रद्युम्न, उनके पुत्र थे अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के पुत्र कौन थे, वज्रना, वज्रना ने इस विग्रह की स्थापना की थी। और भगवान ये जो गोपाल है कौन सी मुद्रा में खड़े हैं, ऐसी मुद्रा में, एक हाथ उनका ऊपर है और एक हाथ ऐसे नीचे है, गोवर्धन धारे, गिरिराज को धारण करने के लिए। यही जो गोपाल है आज कहां निवास करते हैं, नाथ द्वारा में, श्रीनाथ जी के रूप में राजस्थान में यही भगवान सबसे सेवा प्रदान दे रहे हैं। इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, भगवान ने कहा मुस्लिमों ने जब आक्रमण किया तो पुजारी ने मुझे इस जंगल में डाल दिया और वो भाग गया, जिसके कारण कई सालों से मैं झाड़ियों में था। तो अच्छा हुआ कि तुम आ गए, तो मुझे सावधानी से यहाँ निकालो। तो स्वप्न में वो बालक अंतर्धान होता है और माधवेंद्र पुरी जग जाते हैं। माधवेंद्र पुरी ही रो पड़ते हैं कि कैसा मैं दुर्भाग्यशाली था कि भगवान स्वयं मुझे दूध लेकर आए, मैं उनको पहचान नहीं पाया। तो ये भगवान की एक विशेष योजना थी फिर रोते रहे, अकेले रोते रहे, और उन्होंने सोचा केवल रोना ही नहीं, अभी सेवा भी करनी पड़ेगी। कई बार हम कहते हैं ना, भगवान के प्रेम क्यों नहीं दिख रहा है, इतना भगवान के प्रेम में मुझे रोना चाहिए, लेकिन असली रोना क्या है, उनकी सेवा में लगना। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि महान भक्त संसार को दिखाता नहीं है कि मेरे आंखों से आंसू बह रहे हैं, इतना प्रेम है, वो अपने प्रेम को दिखाता है सेवा के द्वारा, कितना अधिक भगवान के प्रति सेवा की भावना है। इस प्रकार से फिर माधवेंद्रपुरी स्नान कर लेते हैं और गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा करते हैं और वो कहते हैं कि आपके गांव के जो स्वामी हैं गोवर्धनधारी इस कुंज में पड़े हुए हैं, आइए चलिए हम उनको बाहर निकालते हैं। तो सारे लोग चलते हैं वहां जंगल में, रास्ता आदि बनाते हैं, अपने साथ कुदाल आदि लेते हैं और फिर वो सारी झाड़ियों को काट कर खुदाई कर कर फिर उनको एक विग्रह प्राप्त होते हैं। कौन से विग्रह थे? गोपाल के विग्रह थे। तो गोपाल के विग्रह इतने भारी थे कि कई लोग उनको उठाने का प्रयास कर रहे थे लेकिन उठ नहीं पा रहे थे, तो ऐसे तो उन्होंने उठाया और फिर सारे लोगों ने मिलकर भगवान के उस विग्रह को गोवर्धन के ऊपर ले गए और फिर इन्होंने सोचा रहे भगवान के लिए कुछ आसन नहीं है बैठने के लिए। माधवेंद्रपुरी ने देखा एक बड़ा पत्थर दिख रहा है, पत्थर को ऐसे लेटा दिया, एक पत्थर पीछे एक पत्थर नीचे, यही भगवान का क्या बना? सिंहासन। तो माधवेंद्रपुरी ने भगवान को वहां बिठा दिया। फिर गांव के जो लोग थे, ब्राह्मण थे, वो कई सारे जल घड़े भर भर कर जल लाने लगे और हजारों लोग वहां इकट्ठा हो गए, स्त्रियां गीत गाने लगे, कुछ प्रार्थनाएं करने लगे, नगाड़े बजने लगे। इस प्रकार से महोत्सव की तैयारी हो रही थी और उस तैयारी के लिए सारे गांव के लोग अपने साथ भगवान को अर्पित करने के लिए कुछ ना कुछ लेके आ रहे थे। तो सारे लोगों ने दूध दही आदि लेकर आए। फिर माधवेंद्रपुरी ने भगवान को सबसे पहले सोचा कि स्नान कराना है, अभिषेक कराना है, तो सबसे पहले तेल लगाया, तेल से भगवान का मालिश किया अच्छे से, जैसे हम यहाँ अभिषेक करते हैं तो पहले क्या करते हैं, तेल चंदन आदि लगाते हैं फिर अभिषेक करते हैं। तो वैसे उन्होंने तेल से उनका अंग मर्दन किया और फिर पंच द्रव्य से और पंचामृत से क्या किया, उन्होंने भगवान को स्नान कराया, फिर तेल लगाया जिससे उनका बॉडी क्या हो जाए, चिकना हो जाए, सुंदर हो जाए। तो इस प्रकार से माधवेंद्रपुरी फिर से उनको स्नान आदि कराते हैं और भगवान को भगवान की आरती आदि कर उनको कई सारे व्यंजन विशेष रूप से अर्पित करते हैं। तो जब माधवेंद्रपुरी ने कई सारे व्यंजन अर्पित किए तो अचानक बहुत सारे लोग आ गए जिन्होंने मिलकर कई सारे व्यंजन फिर से कुक करना शुरू किया। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज कहते हैं कि ब्रज के सारे लोग वहां इकट्ठा हो रहे थे और एकत्रित होकर उन्होंने कई सारे ढेर के ढेर चावल बना दिए, रोटियां बना दी, दालें बना दी, स्वीट्स बना दिए। फिर माधवेंद्रपुरी ने सब भगवान को अर्पित किया और फिर अर्पित कर कर देखा कि भगवान ने सब कुछ खा लिया लेकिन फिर सब कुछ क्या था, वैसे के वैसे दिख रहा था। तो प्रभुपाद कहते हैं ये केवल भक्ति समझ सकता है, सब अर्पित करो भगवान को लेकिन सब कुछ क्या रहता है, भगवान के सामने रहता है। हाँ, तो माधवेंद्रपुरी ने वो सारा भोगा निकाला और फिर कई सारे घड़े जल के द्वारा सुगंधित जल भगवान को पिलाया, बल्कि उनका जो पहला अभिषेक हुआ था उसमें 900 घड़े जल डाला था। कितने घड़े? 900 गोविंद कुंड का ठंडा जल। तो माधवेंद्रपुरी ने फिर भगवान को सुलाते हैं इतना भोग प्रदान करने के बाद। अभी सुलाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी तो उन्होंने एक चारपाई लेके आ गए, चारपाई पर कपड़ा डाल दिया और भगवान को सुला दिया कि आपके लिए शयन की व्यवस्था है। अभी दीवारें भी नहीं थी, पत्थर के ऊपर खड़ा किया था, इमरजेंसी में क्या करे, जैसे हम पर्दे लगाए, कोई दीवार नहीं है, ये उचित नहीं है। उचित क्या होना चाहिए? दीवारें होनी चाहिए। तो वहां तो दीवारें नहीं थी, तो माधवेंद्रपुरी ने घास आदि के चार ऐसे चारों ओर से दीवारें खड़ी कर दी और फिर सारा भोगा लेकर सबसे पहले ब्राह्मण और उनकी पत्नियों को खिलाया और फिर बाकी सारे लोगों को भोजन आदि सबको उन्होंने खिलाया। और सबसे आखिरी में माधवेंद्र पुरी स्वयं क्या करते हैं, खाते तो क्या खाते हैं, थोड़ा सा दूध और स्वीट्स लेते बस और कुछ नहीं। फिर माधवेंद्र पुरी इस प्रकार से भगवान की सेवा में लग गए। जब सब जगह पता चला कि गोपाल प्रकट हो गए हैं तो ब्रज के धनाढ्य लोग मथुरा आदि से आते थे उनकी सेवा के लिए, कोई बर्तन दे रहा था तो कोई गाय दे रहा था, इतनी गाय हो गई कि वहां एक नई गौशाला खड़ी हो गई गोपाल के लिए। अभी दूध की कमी नहीं थी, दही की कमी नहीं थी, घी की कमी नहीं थी। हमें अभी कल पढ़ रहा था पथवाड़ा के बारे में, राजस्थान में स्थान है जहाँ 2 लाख गव्य है, कितने लाख,
2 लाख,
हाँ देसी काउस, सोचो डेली उन गायों का खर्चा 1 करोड़ रुपए है, इतनी गाय है। तो इस प्रकार से यहाँ गोपाल की भी इतनी गाय हो गई, गोपाल आनंदित हो गए। भगवान आनंदित होते हैं जब वो गायों को देखते हैं। फिर माधवेंद्र पुरी ऐसे 2 साल उन्होंने सेवा में बिताया। फिर एक दिन माधवेंद्र पुरी शयन कर रहे थे और स्वप्न में भगवान आए 2 साल के बाद और क्या बोले, ये श्लोक बोले। 2 साल के बाद भगवान ने क्या बोला, गोपाल कहे पुरी आमार ताप नहीं जाए। अब इतना 900 घड़ों से स्नान कराया फिर भी कहते गर्मी नहीं गई, 2 साल रोज अभिषेक हो रहा था फिर भी कहते गर्मी नहीं गई। अभी क्या चाहिए उनको, चंदन, मतलब भगवान की डिमांड हमेशा बढ़ती रहती। इसलिए सनातन गोस्वामी ने मदन मोहन को डांटा था, जब मदन मोहन सनातन गोस्वामी को प्राप्त हुए है और सनातन गोस्वामी तो बेचारे ये है वैरागी है, उनको कुछ जो भी भिक्षा मांगकर आटा लेके आते थे उसको यमुना के जल में डुबो देते थे और उससे आग के ऊपर डाल देते थे और भगवान कहते खाओ ये बाटी। हाँ तो रोज अभी शुरुआत प्रेम से खा रहे थे, कब तक प्रेम को सहन करें। कई बार होता है ना हम किसी के प्रेम को कई बार टॉलरेट करते हैं, ठीक है प्रभु जी, लेकिन कब तक टॉलरेट करें। रोज ही बाटी खिला रहे हैं, फिर एक दिन हम ये करते हैं परेशान होकर बोलते हैं। तो फिर मदन मोहन को सनातन गोस्वामी कहते हैं कब तक ये बाटी खिलाते रहोगे, इसमें नमक भी तो डाल के दे दो। उन्होंने कहा अरे सनातन गोस्वामी प्रेम के द्वारा ही आप डांट सकते हो, आपका अधिकार होना चाहिए डांटने का। तो भगवान के प्रति इतना प्रेम था सनातन गोस्वामी के हृदय में, उन्होंने डांट दिया, अरे आज नमक मांग रहे हो कल पनीर भी मांगोगे, घी मांगोगे, तुम्हारी डिमांड बढ़ती जाएगी, मैं सब पूर्ति नहीं कर सकता। तो फिर उसी प्रकार से यहाँ अभी कहा कि बाहर निकालो, निकाल दिया आपको गोवर्धन के ऊपर, वहां भी रख दिया, 2 साल सेवा भी की, अभी क्या मांग रहे हो चंदन। अरे ये भी नहीं कि चलो यहाँ यूपी में मिलने वाला चंदन हो, वहां का चंदन हो, वृंदावन का। भगवान कहते कौन सा चंदन चाहिए, मलय, जो मलय प्रांत में जन्मा हुआ चंदन है वही चाहिए। हम भी कहते ना कि पानी पूरी खाएंगे तो कहा कि दिल्ली क्या कहते हो चौपड़ी जो भी है, पिज्जा खाएंगे तो उस स्थान का। इस प्रकार से भगवान कहते चंदन चाहिए मुझे तो कहाँ का, इतना दूर सोचो। और वो कहा है, जगन्नाथपुरी है ये स्थान, मलय प्रदेश। तो उन्होंने कहा कि वहां आपको चंदन लेके आए, मेरे लिए गर्मी बहुत बढ़ रही है। तो मलय उन्होंने कहा मलय आना जाया नीला छल है थे अन्य है थे नहीं तुम्हें छलह करे थे। अभी देखो क्या ऑर्डर है, उन्होंने कहा नीलाचल चले जाओ, दूसरी जगह का चंदन नहीं चलेगा मुझे, अन्य है थे नहीं, तो कहते दूसरी जगह का नहीं चलेगा और त्वरित निकलो, अभी के अभी निकलो, ऐसे नहीं कि 1 महीने के बाद लेके आओ। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज थे, वो अपने शिष्य को कहा किसी और जगह भेजते थे तो उनको कहते थे अभी आपको सोचो कानपुर जाना है, अभी कानपुर चलिए। वो यदि कहे कि गुरुदेव थोड़ा सा आश्रम में जाकर बैग पैक करता और शाम को निकलता हूँ, नहीं, आबे में साबे गेट से बाहर वो कहते थे सामान बाद में भेजूंगा, वो पहले भेज देते थे सामान बाद में भेजते थे, ऐसे थे भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती। तो यहाँ भगवान ने कहा अभी निकलो त्वरित, ये त्वरित शब्द यूज हुआ है। तो फिर स्वप्न देखकर टेंशन में नहीं आ गए, हम तो सेवा देने वाले भक्त को देखते तो क्या हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। कई भक्त तो भक्त का नाम टेंशन रख देते कि सामने से टेंशन प्रभु जी आ रहे हैं। तो इस प्रकार से इतना आनंद हो गया इनको कि हरे उनकी सेवा करने का मौका मिल रहा है, फिर वो निकल पड़े। ऐसे नहीं कि अभी वेट करते, अभी टिकट नहीं मिल रही है, वेटिंग लिस्ट में है, नहीं, वो निकल पड़े पैदल माधवेंद्रपुरी। और ऐसे नहीं कि चलो अभी जाता हूं एक सेवा के लिए दूसरी सेवा केयर नहीं करूंगा, दोनों चीजों की जिम्मेदारी उन्होंने रखी। ये जो यहाँ गोपाल की सेवा कर रहे थे, देखा दो वैरागी ब्राह्मण बंगाल से आए हैं, तुरंत उनको दीक्षा दे दी, कहा कि आप इनकी सेवा करना शुरू करो विग्रह की, मैं तब तक कहाँ होकर आता हूँ जगन्नाथपुरी। तो यहाँ की सेवा सुव्यवस्था की और फिर निकल पड़े, चले गए धूप गर्मी आदि को सहन करते हुए पैदल जाना है जगन्नाथपुरी। हम एक रथ यात्रा में पूरे दिन परेशान होते हैं, आपको कहा जाए दूसरे दिन भी रथ यात्रा है, सोचो तीन दिन यहाँ रथ यात्रा हो एवरीडे, हम तीन दिन नहीं अटेंड कर सकते, एक दिन बहुत है जगन्नाथ आपकी कृपा। तो लेकिन यहाँ कई महीने महीने चले माधवेंद्रपुरी, यहाँ से नवद्वीप गए शांतिपुर, चलते चलते शांतिपुर अद्वैत आचार्य के घर गए, माधवेंद्रपुरी ने अद्वैत आचार्य को दीक्षा दी और वहां से फिर ओडिशा के लिए निकल पड़े। तो ओडिशा में जाते जाते वो कहां पहुंचे, खेलचोरा गोपीनाथ। तो माधवेंद्रपुरी जब खेलचोरा गोपीनाथ में पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा कि इतनी सारी अद्भुत गोपीनाथ की सेवा हो रही है, जरूर यहाँ कुछ अच्छी चीज भोग लगती होगी, मुझे पता करना चाहिए कि क्या चीज यहाँ भोग लगती है, ताकि मैं यदि अपने वृंदावन वापस जाऊंगा गोवर्धन, मेरे गोपाल को भी वही चीज बनाकर भोग लगाऊंगा। तो इस प्रकार से इसके जैसे क्या सीखते हैं, किसी जगह जा रहे हो आप तो आपको सीखना चाहिए, बेटर आप अपने स्थान में जाकर भगवान की सेवा और अच्छे से कैसे कर सकते हो। तो माधवेंद्रपुरी ने वहां देखा एक व्यक्ति बैठा था, उनके पास बैठ गए और उन्होंने पूछा यहाँ क्या 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 भोग लगता है। तो उन्होंने कहा एक चीज यहाँ भोग लगती है, एक विशेष खीर है जो पृथ्वी में कहा भी भोग नहीं लग, पृथ्वी के ऐसे भोग कहा नहीं आ, पृथ्वी में ऐसा भोग किसी और जगह नहीं है। जब मैं फर्स्ट टाइम वहां रेमुना गया था 2002 में, तो बस हम सारे उतावले हो रहे थे एक ही चीज के लिए, वहां जब भगवान को देखने के लिए नहीं, उनका खीर प्रसाद के लिए। और वहां ऐसे मटकों में इतनी खीर रखी जाती है, फिर जितना आप चाहे उतना ले सकते हो, अनलिमिटेड है। तो वैसे इन्होंने सुना अरे खीर भोग लगती है, इनके मन में विचार आया। तो और इनका स्वभाव क्या था, आयाचित वृत्ति, मतलब अपने भोजन के लिए किसी से मांगेंगे नहीं, आजागर वृत्ति, जैसे भगवान की कृपा से मिले उसमें संतुष्ट, बस मांगेंगे नहीं किससे अपने भोजन के लिए। हाँ तो इस प्रकार से जो भी मिल जाए, जैसे अजगर होता है एक जगह बैठा रहता है मुंह खोलकर, जो आ जाए नहीं आ जाए तो भी संतुष्ट है, आ जाए तो भी संतुष्ट है। प्रभुपाद ने ही कहा भक्तों का स्वभाव, आज हम वृक्ष के नीचे सोने के लिए तैयार है उसमें भी उतने ही सुखी है, दूसरे दिन कोई हमें बड़े महल में निवास दे सोने की व्यवस्था, उतने में उतने ही हम क्या है सुखी है। तो उसी प्रकार से ये इनका स्वभाव था, और उन्होंने ये विचार आया कि मुझे इसका आस्वादन करने का मौका मिल जाए थोड़ी सी खीर। तो उसी समय भोग लग रहा था, पुजारी लेकर गया भोग लगा रहा था, उन्होंने जब सोचा अरे ये कैसे विचार मेरे हृदय में आ गए, भगवान को अभी भोग ही लग रहा है तो मेरी जीवा उसको खाने के बारे में सोच रही है, मेरा मन जीवा लालायित हो गई है, मैं अपराधी हूं, मैं क्या हूं अपराधी हूं, ये भावना उनके हृदय में आए। उन्होंने कहा नहीं अभी मैं यहाँ से निकल पड़ता हूँ। तो माधवेंद्रपुरी अपने आप को खोज रहे थे और
दुखी होकर एक स्थान में जाते हैं, वहां जाकर हरि नाम का उच्चारण करने लगते हैं। फिर जब ये भोग लग गया और रोज 12 पात्र भोग लगता है, चैतन्य महाप्रभु जब गए तो उनको 12 के 12 दिए थे। महाप्रभु ने कहा 5 है, 12 क्यों दे रहे हो? उन्होंने कहा नहीं, महाप्रभु ने ले भी दिए, सोचा नहीं क्या ठीक है। तो फिर जब यहाँ पुजारी सो गया पर्दा आदि बंद करके, तो गोपीनाथ सपने में आते, उठ पुजारी उठो, विग्रह बोलते हैं, हमसे नहीं बोलते, पुजारी हमसे बोलते हैं। हाँ, तो उन्होंने कहा उठो और उठकर क्या करो, एक खीर का जो पात्र है मैंने चुरा कर रखा है, वो मेरे कपड़े जो चरण है कपड़े के पीछे है, पर्दे के पीछे। तुमने जब भोग निकाला तो 12 की जगह कितने निकाल दिए, 11 ही निकाल दिए, और एक मैंने छुपा के रखा था, उठो उसको ले लो, और मार्केट प्लेस में मेरा भक्त माधवेंद्रपुरी है उसको जाकर दे दो। ये पुजारी उठा, अरे क्या हो गया, वो स्नान वगैरह करके आल्टर में जाता है, घंटी बजाते हुए जाता है, देखता है एक पात्र दिखाई दे रहा है, ले लिया, खुश हो गया। और भगवान ने कहा था इसको देना है माधवेंद्रपुरी को, तो ये गए माधवेंद्रपुरी, चिल्लाते हुए कौन माधवेंद्रपुरी है, उनके लिए गोपीनाथ ने खीर की चोरी की है, ऐसे चिल्लाते चिल्लाते गए। माधवेंद्रपुरी तो वहां एक कोने में बैठकर, उसमें वर्णन आया है शून्य हाट, हाट मीन्स बाजार बंगला में, शून्य मीन्स मनुष्यों से रहे, अकेले एक स्थान में बैठे हुए थे। तो ये गया व्यक्ति चिल्लाते चिल्लाते कि आपके लिए कौन माधवेंद्रपुरी है, तो माधवेंद्रपुरी गदगद हो गए, विनम्रता से आए, उनको प्रणाम कर दिया, कहा कि तो आपके लिए गोपीनाथ ने खीर की चोरी की है, खीर गोपीनाथ, उन्होंने ले लिया पूरा मटका ले लिया, और वो पुजारी दंडवत मारने लगा, इतने सारे दंडवत, और फिर उन्होंने एक जगह बैठ कर खीर का आस्वादन करने लगे, खीर खाने लगे, और वो जो मिट्टी का पात्र है उसके टुकड़े टुकड़े करके अपना जो ऊपरी वस्त्र था उसमें बांध दिया, खीर भी खाई और वो जो मिट्टी का पात्र था उसको भी क्या किया उन्होंने, खा डाला। धीरे धीरे तो यहाँ भगवान को तब से खीर चोरा गोपीनाथ। अभी उनको चोर क्यों कहा गया है, आचार्यगण कहते हैं अभी खीर तो उनकी थी ना, चोरी क्यों, ठीक है वृंदावन में समझ में आता है दूसरों के घर में चोरी करते इसलिए चोर कहा जाता, अभी यशोदा के घर में चोरी करते तो उनको चोर थोड़ी कहते हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने भोग चोरी नहीं किया था, यहाँ क्या चोरी किया था, प्रसाद, क्योंकि भोग लगने के बाद वो जो भोजन है वो क्या बन जाता है, प्रसाद। तो प्रसाद पर भगवान का अधिकार नहीं है, प्रसाद पर किसका अधिकार है, भक्तों का। अब भक्तों का अधिकार क्षेत्र में जो प्रसाद है उसको चुरा लिया, इसलिए भगवान को क्या कहते हैं, चोर है। इस प्रकार से भगवान ये टाइटल स्वीकार करते हैं, इससे भगवान अपना जो प्रेम है उनके प्रति दिखाते हैं। फिर माधवेंद्रपुरी ने सोचा सब लोग मुझे दंडवत करेंगे, प्रणाम करेंगे, मेरी स्तुति करेंगे, तो वहां से वो जल्दी रात के रात भाग गए जगन्नाथपुरी, और उन्होंने सोचा कि मेरी प्रतिष्ठा सब जगह फैलेगी, तो प्रतिष्ठा का भय हमेशा भक्त को होता है, इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा संसार की जो प्रतिष्ठा है वो सुअर की विष्ठा के समान है। सुअर की विष्ठा क्यों कहा गया है, क्योंकि सुअर विष्ठा खाता है फिर उसकी विष्ठा, मतलब इतना नीच है, इतना घिनौना है इस संसार की प्रतिष्ठा की अभिलाषा करना, हमेशा चाहते भौतिक प्रतिष्ठा। हाँ, तो इस प्रकार से माधवेंद्रपुरी वहां पहुंचते जगन्नाथपुरी, लेकिन भक्ति से प्राप्त हुई जो प्रतिष्ठा है वो भक्तों से अधिक तेजी से आगे जाती है, उस भक्त से आगे जाती है। माधवेंद्रपुरी जगन्नाथपुरी पहुंचने से पहले वो प्रतिष्ठा वहां पहुंच गई, जगन्नाथपुरी में सब लोग सोचने लगे कौन है माधवेंद्रपुरी, अरे जब पहुंचे डिवोटीज उनका स्वागत करने लगे, सबने उनको चंदन इकट्ठा करके दिया, लक्ष्मी दिया, और राजा से पत्र दे दिया ताकि रास्ते में टैक्स कलेक्ट करने वाले उनको तंग ना करें, दो व्यक्ति दिए उनके साथ, एक मन चंदन दे दिया, और इन सबको लेकर माधवेंद्रपुरी जगन्नाथपुरी से निकलते हैं और निकलते निकलते फिर कहां आते हैं, रेमुना में आते हैं जहां गोपीनाथ थे। तो रेमुना में आकर माधवेंद्रपुरी जब सो रहे थे तो फिर से गोपाल स्वप्न में आ गए। अब ये सपने का कौन सा टाइम था, टाइम मीन्स कितनी बार, थर्ड टाइम। पहले उनको बाहर निकाला, दूसरा चंदन लाने के लिए जाओ, तीसरा चंदन यहाँ लगाओ। तो इन्होंने भगवान ने कहा, गोपाल ने कहा, देखो माधवेंद्र मुझे अभी गोवर्धन में चंदन आदि सब मिल गया है, यहाँ जो गोपीनाथ है ना रेमुना में उनको चंदन लगाओ, अब वो मुझसे अभिन्न है, तो सारे विग्रह अभिन्न है। कुछ लोग होते ना कहते ना मुझे ना वृंदावन के राधा श्याम सुंदर बड़े अच्छे लगते हैं और उनकी सेवा करूंगा, ये फरीदाबाद के गुरु गोविंद उतने ठीक नहीं है, ऐसे सोचते कई बहुत। हाँ तो विग्रह सेम है, हाँ भगवान एक ही जगह सेवा स्वीकार करते सारी जगह। तो वहां फिर माधवेंद्रपुरी ने लोगों को लगाया चंदन, घिसाया और भगवान को चंदन का लेप किया 21 दिन के लिए। हाँ 21 दिन ये चंदन यात्रा हुई। माधवेंद्रपुरी इतने आनंदित होते थे भगवान को चंदन का लेप देखकर, भक्त आनंद से भर जाता है, भगवान की सेवा अच्छी तरह से होती है तो उसको आनंद महसूस होता है। तो फिर माधवेंद्रपुरी बाहर है, जब गर्मी के दिन खत्म हो गए फिर माधवेंद्रपुरी जगन्नाथपुरी गए, वहां 4 महीने उन्होंने चातुर्मास निभाया। फिर माधवेंद्रपुरी रेमुना आते हैं और रेमुना फाइनली निवास करते हैं, वहां से फिर से जाते नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु ये सब बता रहे हैं, हम तो संक्षिप्त में बोल रहे हैं सारी चीजें। तो चैतन्य महाप्रभु ने फिर नित्यानंद प्रभु को कहा, देखो हाँ पुरी समान भाग्यवान जगत नहीं आ, माधवेंद्र पुरी के समान इस जगत में कोई भाग्यवान व्यक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 बार भगवान उनके स्वप्न में आते हैं, जिनको स्वयं भगवान दूध लेकर देते हैं और जिनके द्वारा संसार का उद्धार करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं और जिनके लिए भगवान खीर की चोरी करते हैं और जिनके द्वारा भगवान चंदन के लेप को स्वीकार करते हैं, इतनी सारी चीजें। इसलिए चैतन्य महाप्रभु अपने मुख से कह रहे हैं इस संसार में माधवेंद्रपुरी जैसा भाग्यवान कोई नहीं है। फिर उन्होंने कहा माधवेंद्रपुरी की सेवा को देखो, इतना उन्होंने कष्ट को स्वीकार किया कि उनके प्रेम की कोई पराकाष्ठा नहीं है, भगवान की सेवा के लिए उन्होंने इतने बड़े कष्ट को अपने जीवन में स्वीकार किया, इतनी लंबी यात्रा की वृंदावन से जगन्नाथपुरी की। तो इसलिए महाप्रभु कहते हैं प्रगाढ़ प्रेम रहे स्वभाव आचार, निज दुख विघ्न देर ना करे विचार। तो अत्यधिक प्रेम का लक्षण क्या है कि भक्त अपने स्वयं के कष्टों की चिंता नहीं करता भगवान की सेवा में, ये एक लक्षण है कि उस व्यक्ति को वास्तव में भगवान से क्या हो गया है, प्रेम हो गया है, वो भगवान की सेवा आदि के लिए कष्टों को स्वीकार नहीं करता। और वास्तव में भगवान गोपाल की चाल थी, सारे संसार को माधवेंद्रपुरी का गाढ़ प्रेम दिखाना चाह रहे थे भगवान। एक तो होता है ऊपरी ऊपरी प्रेम, दूसरा होता है कैसा डीप लव, गाढ़ प्रेम। गाढ़ प्रेम होता है तो व्यक्ति भगवान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, उनकी सेवा है। तो ये सारे संसार को दिखाना चाह रहे थे भगवान, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ऐसे माधवेंद्रपुरी अपना अंतिम समय वहां रेमुना में उन्होंने बिताया और इतना उनका भक्ति था भगवान के प्रति कि उन्होंने गोपियों की भावना से भावित होकर अपने देह का त्याग किया वहां निवास कर। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा जब माधवेंद्रपुरी का अंतिम समय था तो उस समय उन्होंने एक श्लोक का उच्चारण करते करते अपने देह का त्याग किया है। वो ऐसा श्लोक था सबसे प्रसिद्ध, जिस प्रकार से वो श्लोक चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चंद्रमा के समान था जो सारे जगत को प्रकाशित करता है। जिस प्रकार से चंदन को घिसते रहने से उसकी सुगंध बढ़ती है, उसी प्रकार से इस श्लोक का विचार करने से, मनन करने से इसकी महत्ता और बढ़ती है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा जैसे रत्नों में कौस्तुभ मणि श्रेष्ठ है,
उसी प्रकार से सारे रस काव्य में या श्लोकों में ये श्लोक सर्वश्रेष्ठ है जो माधवेंद्र पुरी उच्चारण करते थे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये श्लोक राधा रानी ने अपने मुख से उच्चारण किया था और वही श्लोक माधवेंद्र पुरी की वाणी से निकला और तीसरा व्यक्ति इस श्लोक को बोल पाया वो थे चैतन्य महाप्रभु। और कृष्णदास कविराज कहते हैं इस संसार में चौथा व्यक्ति कोई नहीं है जो इसका आस्वादन कर सके या कोई और समर्थ नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु या कृष्णदास कविराज कहते क्या वो श्लोक था अये दीन दयाद्र नाथ है मथुरा नाथ कदा लोकेश हृदय तद लोक कातर दैत ब्राह्मति किम करो मैं हम। तो माधवेंद्र पुरे ये राधा रानी के वाणी का उच्चारण कर रहे हैं। जब राधा रानी ने देखा कि कृष्ण अर्जुन के साथ मथुरा चले गए और जो विरह राधा रानी के हृदय में प्रकट हो गया वैसा ही विरह की भावना माधवेंद्र पुरे के हृदय में जागृत हो गई। भगवान से प्रीति बढ़ रही है इसका लक्षण क्या है विरह थोड़ा सा महसूस होना चाहिए। अरे आज मुझसे भागवतम क्लास मिस हो गई थोड़ा सा खटक जाना चाहिए आज मुझसे प्रसादम मिस हो गया थोड़ा सा खटक जाना चाहिए पता है कि नहीं आज अरे मैं आज मंगल आरती नहीं उठ पाया मुझे रोने की भावना हो जानी चाहिए आज भक्तों का संग नहीं हुआ कुछ तो होना चाहिए हृदय में कुछ हो रहा है उसका मतलब थोड़ा सा कुछ भगवान के प्रति आगे बढ़ रहा हूँ कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है तो उसका मतलब बीमारी बहुत गंभीर है। तो इस प्रकार से उस श्लोक का अनुवाद है कि जहां राधा रानी कहते कि हे नाथ हे परम कृपालु स्वामी हे मथुरा पति मुझे फिर से आपके दर्शन कब होंगे आपका दर्शन ना पाकर मेरा मन विक्षुब्ध हो रहा है हृदय अस्थिर हो रहा है आप मैं क्या करूं एक विरह की भावना है। तो ये श्लोक को पढ़ते पढ़ते चैतन्य महाप्रभु भी बोल रहे हैं लेक्चर चैतन्य महाप्रभु पढ़ते पढ़ते मूर्छित होकर गिर पड़े और इतना रोने लगे कि नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु को उठाया अपने गोद में रखा फिर भी चैतन्य महाप्रभु रोना नहीं बंद कर रहे थे। अभी चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में आ गए और किसके लिए रो पड़ रहे हैं कृष्ण के लिए जो मथुरा के पति हैं। फिर महाप्रभु इधर उधर दौड़ने लगे नाचने लगे गाने लगे फिर से रोने लगे और फिर बोलने लगे एक ही शब्द आए दिन कहने लगे कि मैं बहुत दीन हूं दीनहीन हूं। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु प्रेम के लक्षण प्रकट कर रहे थे और फाइनली भक्तों ने देखा शांत हो गए और पुजारी उस समय 12 खीर के पात्र लेके आ गया। क्या लेके आ गया 12 अमृत केले खीर उस खीर का नाम क्या है अमृत केले। और महाप्रभु ने वो देखा बहुत खुश हो गए और महाप्रभु ने 5 लिए और बाकी 7 क्या लिए वापस दे दिए थे। और फिर भक्तों ने उस रात्रि में खीर प्रसाद ग्रहण किया और उसके बाद वो रात्रि बिताए कृष्ण का संकीर्तन करते हुए। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने जो वर्णन किया था माधवेंद्र पुरि के बारे में उसका स्मरण नित्यानंद प्रभु जगदानंद दामोदर आदि मुकुंद ये 4 लोग थे। चैतन्य महाप्रभु के साथ कौन से 4 लोग थे जगदानंद दामोदर मुकुंद और नित्यानंद प्रभु। तो ये लोग महाप्रभु के साथ पहली जगन्नाथपुरी यात्रा में गए थे। तो इस प्रकार से माधवेंद्र पुरे हमारे संप्रदाय के विशेष आचार्य हैं जो चैतन्य महाप्रभु को अत्यधिक प्रिय थे और अंतिम समय में जब वो शरीर छोड़ रहे थे और ये श्लोक का उच्चारण कर रहे थे तो उनके एक शिष्य था रामचंद्र पुरी उन्होंने कहा आप क्या कर रहे हो ब्रह्म का ध्यान करो ब्रह्म का वो शिष्य गुरु को बोल रहा है रामचंद्र पुरी। उन्होंने कहा माधवेंद्र पुरी ने कहा तुम्हारा मुख में देखूंगा तो मेरी सही गति नहीं होगी हट जाओ मेरे सामने से। तो उस समय उनकी अंतिम स्थिति में उनको उठना अपने दैनिक कार्यों को करना बहुत कठिन था लेकिन उनके एक शिष्य थे ईश्वरपुरी। ईश्वरपुरी इतने विनम्र थे कि माधवेंद्रपुरी के लिए कृष्ण कथा पढ़कर सुनाते थे और उनकी सब प्रकार से सेवा करते थे मतलब उनका मल मूत्र आदि साफ करना उनको प्रसाद सर्व करना सब सेवा की माधवेंद्र पुरी बहुत आनंदित हो गए और उनकी कृपा से क्या हुआ, फिर स्वयं भगवान ऐसे क्वालिफाइड शिष्य का शिष्य बनना स्वीकार करते हैं। चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने सबसे अच्छी सेवा अपने आध्यात्मिक गुरु की, इस प्रकार से भगवान दिखाते हैं कि वास्तव में एक शिष्य के लिए गुरु की सेवा कितने महत्वपूर्ण है। माधवेंद्र पुरे का स्मरण करना चाहिए और उनके कारण ही वास्तव में ये चंदन यात्रा शुरू हो गई है और चंदन घिसना भी चाहिए, सुनना अच्छा है चंदन यात्रा, लेकिन कभी कभी क्या करना चाहिए, रोज घिसना चाहिए। जितना हम चंदन को ऐसे घिसते रहेंगे उतना हमारे जो भौतिक अहंकार है वो भी चूर चूर होने लगेगा। हमारे शरीर के वेट से ज्यादा वेट किस चीज का है, अहंकार का। तो ये अहंकार ही हमारे भगवान की सेवा से हमें रोक देता है, इसलिए इस अहंकार को क्या करो, घिसो। अभी ये पूरा महीना घिसने का है, जैसे नाक घिसते है ना व्यक्ति शरणागति, वैसे ही चंदन घिसते रहो उसका मतलब आपका हृदय फिर घिसेगा, भगवान के प्रति आकृष्ट होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और कुब्जा का भी स्मरण करें, भगवान जब वृंदावन से मथुरा आए थे कुब्जा से क्या मांगा था उन्होंने, चंदन। कुब्जा ने एक सेकंड नहीं सोचा, वो दे दिया। तो वैसे हमें अपॉर्चुनिटी है भगवान को चंदन अर्पित करने की, इस महीने प्रयास करें घिसते रहे चंदन और भगवान और माधवेंद्र पुरी का स्मरण करें। हरे कृष्णा गत्रा चैतन्य चरितामृत के चंदन यात्रा महा महोत्सव के अक्षय तृतीया के हरि पावन श्रील प्रभुपाद की।